ओम शांति। कौन सा सबसे बड़ा खजाना? ये तो ज्ञान कह रहे हैं भाई, ये योग कह रहे हैं। अभी गीत क्या सुना? वो मगन इतने थे कि गीत क्या कह रहा है ये नहीं सुना। सबसे बड़ा खजाना तो खजानों का मालिक हमारा हो गया, सबसे बड़ा खजाना। और बाकी उसने दिए, बाबा ने भी वर्णन किए हैं कल, और बहुत बार इस पर मुरलियां भी चल चुकी हैं। तीन तीन बातें बाबा को बहुत याद आ रही थी ना। अभी देखो किस किस को याद है, जो खजानों से भरपूर होंगे उनकी तीन निशानियां। नैनों में रूहानियत, चेहरे पर मुस्कुराहट, कर्मों में गुण संपन्न। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी। सर्व खजानों में संपन्न माना भरपूर, और जो फुल होता है अचल हो जाता है। घड़ा पानी से भरा है छलकेगा नहीं, आधा है तो बाहर ही गिरता जाएगा। जो ज्ञान में फुल, जो खुशी में फुल, जो स्वमानों से फुल, सुख शांति में फुल, पवित्रता में फुल, अचल अड़ोल हो जाएंगे। सभी को अच्छी तरह विचार करना है। जब भी बाबा की मुरलियां चलती हैं, इनमें से कोई एक बात अपने लिए सीख लेनी होती है सदा ही, कोई एक, कम से कम एक। शुरुआत की बात याद दिला दूं आपको, खजानों की शुरुआत की बात। कल बाबा ने सबसे बड़ा खजाना कुछ और कह दिया, रिचेस्ट बाद में, सबसे बड़ा खजाना कुछ और कह दिया। संगम युग का समय, समय तो चल रहा है, निरंतर चल रहा, अनंत काल से चल रहा। समय को 5000 साल में नहीं बांधा जा सकता, समय तो अनंत काल से चला रहा है। समय हर मनुष्य के लिए वैसे भी महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं वो समय बड़ा इम्पोर्टेंट, एग्जाम देते हैं वो समय और इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति हमारे लिए रोज का समय कौन सा उसमें इम्पोर्टेंट, अमृत वेला बहुत इम्पोर्टेंट। जब उसे मिस किया जाता है तो कैसा लगता है, कुछ खजाने आज खो गए। सभी मिस करते हैं, मेरे सहित करते हैं या नहीं? दुर्गा देवी नहीं करती, इसलिए आप देवी हो। तो संगम युग का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। क्यों? हाँ बोलो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इस समय ही भगवान का अवतरण होता है, और अवतरण के साथ हमारा उससे मिलन होता है। इस समय ही उससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिलता है। बहुतों को इस ज्ञान की वैल्यू का नहीं पता है। अगर किसी ने चारों वेद पढ़े हों, सारी गीता याद हो, उपनिषद बिल्कुल कंठस्थ हो, और उनको ये ज्ञान मिले, आंखें खुली रह जाएं, फटी रह जाएं, कि जिन चीजों को वेद ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिला, वो यहाँ सहज रूप से दिया जा रहा है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, आत्मा का ज्ञान भी, मुक्ति का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान, माया को कैसे जीते इसका ज्ञान। उन्होंने इतना ही लिखा, माया का ज्ञान शास्त्रों में। माया को जीतने का तो पता ही नहीं, जीतना है इतना ही कहा है। गुह्य ज्ञान भगवान ने इस समय दिया और इस समय ही हम जन्म जन्म का भाग्य निर्माण कर सकते हैं। यही वो समय है जिसका एक एक संकल्प और एक एक क्षण, कल ही तो कहा बाबा ने, एक एक संकल्प और एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है। तो क्या हम इस समय को महत्व देते हैं? हमारा ये समय किस में बीतना चाहिए? बोलो, ठीक बोल रहे, और बोलो, थोड़ा सरल कर दो। किस में नहीं बीतना चाहिए, किस में नहीं बीतना चाहिए? ठीक बोल रहे आप, बिल्कुल अच्छा बोल रहे, और बोलो, बिल्कुल ठीक बोल रहे। व्यर्थ चिंतन, पर दर्शन, पर चिंतन, तेरा मेरा बातें, दो माताएं अभी शाम को मिल रहे हैं नीचे से। मैं सबसे एक बात पूछता हूँ, क्या सीखा है? नहीं तो घूम घाम के यात्रा करके चारों धाम की खुश होके घर वापस लौट जाते हैं, वो काफी नहीं है। क्या सीखा? सोचने लगी, क्या सीखा? ये तो सोचा ही नहीं था कि ये भी पूछा जाएगा कहीं, क्या सीखा? फिर मैंने कहा सोच लो अच्छी तरह। एक ने कहा मैंने सीखा दूसरे के अवगुणों का चिंतन नहीं करेंगे, उससे वो अवगुण हमारे में आ जाते हैं। मैंने कहा तुमने तो बहुत अच्छा सीख लिया, बहुत बड़ी चीज सीख ली ना, क्योंकि अवगुण देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो बाकी सब तो बेकार हो गया, उसी में लगी हुई है आत्मा। मैं उनको माता कह के संबोधित कर रहा था, आखिर दोनों बोली भाई जी हम माता नहीं है, राज की बात बता रहा हूँ, हंसना तो अच्छा है, आयु तो उनकी बड़ी थी, आप भी उन्हें देखेंगे तो आप नहीं कहेंगे ये कोई कुमारी है। तो कहा हम दोनों कुमारी हैं, ज्ञान में 5 साल से। मैंने कहा क्यों? कहा ज्ञान से पहले ही हम शादी नहीं करना चाहते थे तो नहीं की। अच्छी बात है ना, कलयुग में। अब वो अपनी एक समस्या रख रही थी मेरे सामने कि मुझे फीलिंग बहुत आती है और मैंने प्रेरणा ली है कि फीलिंग से मुझे मुक्त होना है। बहुत अच्छी बात है ना, वही जो मैं पूछ रहा था, क्या क्या कर लेके जा रहे हो? कहा मुझे अच्छी तरह फील हो गया, अनुभव हो गया कि फीलिंग तो सब कुछ मेरा नष्ट कर रही है। देखो जो मैं कहना चाहता था वो उन्होंने कहा कि सभी लोग मुझे कहते हैं भाई हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम तो फीलिंग आ जाएगी। कहा मैं फीलिंग छोड़ना भी चाहती हूँ तो सब मुझे याद दिलाते हैं। मैंने उसमें ऐड किया कि जिस व्यक्ति को बहुत फीलिंग आती है, वो अगर कहीं से जा रहा है और सामने सांप मिलने वाला है उसको, तो लोग कहेंगे नहीं कि भाई इधर न जाओ सांप है, तुम्हें फीलिंग आ जाएगी तो आखिर तुम्हारा सामना सांप से हो जाएगा। कहा यही बात है। मैंने कहा कोई जा रहा है और सामने वो गड्ढे में गिर सकता है, गड्ढा ढका हुआ है, लेकिन कोई तुम्हें रोकेगा नहीं इस डर से कि तुम्हें फीलिंग आ जाएगी। कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ यही हो रहा है। समझ गए ना सभी, जो फीलिंग देवी हैं और फीलिंग देव हैं, मैं उनको यही नाम दिया करता हूँ, फीलिंग देवी। वो भी तो कोई देवी होगी ना, है तो देवी। तो मैंने जो उन्हें याद दिलाया, मैं उसके लिए ये प्रसंग मुझे याद आया है, जो मैंने उन्हें याद दिलाया वो आप सबको भी याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने उन दोनों को कहा आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं। अब वो एक दूसरे को देखने लगी। मैंने कहा नहीं पता तुम्हें, नहीं पता, बोलो क्या क्या मुरलियों में कहता है बाबा, सुनने वाले सुनते हुए नहीं सुनते। आप में से भी अभी अभी बहुतों ने वो बात सुनी है लेकिन सुनी नहीं है। मैंने उन दोनों को कहा, तुम दोनों बहुत शक्तिशाली हो, अपनी शक्तियों को तो पहचानो। बाबा की बात पर बाद में आता हूँ। आप सबको महसूस पता हो, आज महसूसता की शक्ति पर था ना, सबको पता हो, महसूसता माना यहाँ है रियलाइजेशन। जो जीवन भर पवित्र रहे हूं कलयुग के अंधकार में, क्या वो पावरफुल नहीं है? माताएं बताएं, वो दोनों बहनें थी, बोलो। जो जीवन भर कलयुग की तमो प्रधानता में, जहां चारों ओर गंदगी के सिवाय कुछ नहीं है, बहनों को इसका सब अनुभव है। अगर कोई कह दे ऑफिस में कि ये कुमारी है तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं। तुम दोनों बहुत पवित्र रहे, तुम भूल गए कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। जो विकारों को जीत सकता है उसके लिए फीलिंग को जीतना, और वो जीत लेगी क्योंकि उसे अब लक्ष्य हो गया है और उसे महसूस हो गया है कि ये मेरी बड़ी कमजोरी है, इससे तो वहां के वहीं क्या पीछे हट रहे हैं। तो देखो, पवित्र जीवन ज्ञान योग का जीवन, लेकिन एक फीलिंग कुछ नहीं करने दे रही है। ये प्रसंग मैंने आपको समझ गया ना क्यों सुनाया, जिनमें भी है वो इसको जीतने का लक्ष्य बनाए, और जीतने का तरीका ज्ञान के कुछ पॉइंट्स यूज करो, संकल्प कर लो फीलिंग से मुक्त रहना है, और मास्टर सर शक्तिवान की बहुत प्रैक्टिस करें तो फीलिंग समाप्त हो जाएगी। टाइम लेगा। कोई सोचे आज संकल्प किया और कल फीलिंग प्रूफ हो गए, ये नहीं होगा। और एक दूसरी विधि, सवेरे उठते ही थोड़ा आगे आ जाओ ए बहनों, देखो ये खाली पड़ा, चलो आप ही आगे हो जाओ, पीछे आने वालों को पीछे बैठने का ही रहता है, थोड़ा और आगे हो जाओ, बहुत टाइट न बैठो, अभी है जगह। सवेरे उठते ही अब सब सुन लें और प्रैक्टिस करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, फीलिंग प्रूफ हूं, फीलिंग से मुक्त हूं। सात बार संकल्प करेंगे, आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद अगला संकल्प यही हो, सात बार, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, फीलिंग प्रूफ हूं, फीलिंग से मुक्त हूं। छूटने लगेगी, बल आएगा, लेकिन अभ्यास चालू रखना, एक साल अभ्यास करेंगे मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने हम सबको बहुत खजाने दिए हैं, बहुत खजाने दिए हैं बाबा ने। सबसे बड़ा खजाना बाबा, और कर की मुरली में एक सार वाली लाइन थी, जिन्होंने नहीं नोट की है वो नोट कर ले बुद्धि में भी और कागज पर भी, बाबा को साथ रखेंगे तो साथ चलेंगे। जिनको यहाँ लंबा समय साथ रहने का अभ्यास होगा, अंत में उसी की याद आएगी ना, याद आते ही वो साथ हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स देता है बाबा मुरलियों में, हमें इन सबको पकड़ना है जरा, बहुत छोटी है, सिंपल, इतना ही याद कर लो, बाबा मेरे साथ है, कुछ नहीं, योग की मेहनत नहीं है इसमें, बैठने की मेहनत नहीं, एकाग्रता की मेहनत नहीं, बाबा मेरे, बोलो जरा, बाबा मेरे। नशा हो जाए, केवल शब्द नहीं, नशा हो जाए। जैसे कोई बड़ा आदमी आपका हो दुनिया में, जिसे आपका गहरा नाता हो, कभी भी कुछ काम पड़ जाए, मुसीबत हो जाए, उसे फट से फोन करते हैं, उसकी मदद मिलती है तो मन उसको रहता है ना, फलाना बड़ा व्यक्ति हमारे साथ है, हमें चिंता की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही भगवान हमारे साथ है, बहुत अच्छे एहसास की जरूरत है, इसको स्वीकार कर ले, इसको अपने नशे में ले आए, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और कौन से खजाने बताए? ज्ञान का, योग का भी, योग से ही तो सारे खजाने मिलते हैं, सेवा का भी। अब तीन तरह से प्रारब्ध जमा होगी, तीन तीन बात रिपीट कर ले थोड़े। अपने स्वयं के पुरुषार्थ से, ठहरो ठहरो ठहरो, सेवाओं से, तीसरा जो बताएगा वो बुद्धिमान, दो हो गए, तीसरा बचा है पुरुषार्थ से, सेवाओं से। चलो आ गया पीछे वाले को याद, आप भूल गए, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अब बताओ संतुष्ट करना सहज है या सबसे कठिन काम? ऐसे ही सहज ना बोल दो, जैसे बाबा के आगे हाथ उठा देते, उठा दिया भाई, सब खुश रहते हैं सदा, हाँ जी रहते हैं, हॉल के बाहर निकलते पता चल जाता है कितने खुश रहते हैं। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। माताएं बच्चों को संतुष्ट कर सकती है? कठिन काम है, आराम से होते हैं, या आपको भी असंतुष्ट कर देते हैं? चलो इस पे विचार करना। तीन बातें, तुम हो हाईएस्ट। बहुत माताओं को ये अंग्रेजी कहाँ आती होगी, बेचारे सोचते होंगे भगवान भी अंग्रेजी बोलने लगा आजकल, बोलना तो हिंदी चाहिए। हाईएस्ट माना सबसे महान आत्माएं, होलीएस्ट माना परम पवित्र आत्माएं, रिचेस्ट माना बहुत धनवान आत्माएं। और आगे हो जाओ भाई, बहुत धनवान आत्माएं। तो हम हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, बहुत महान, बहुत पवित्र, बहुत ज्यादा धनवान। धन पर बाबा की मुरली चल चुकी है संडे को, याद है? ज्ञान के धन से स्थूल धन को जोड़ा था बाबा ने। और तीन बातें, सेवाओं के फील्ड में निमित्त, निर्माण, कौन सा तीसरा बोला? निस्वार्थ। अब थोड़ी सी चर्चा जरा निस्वार्थ पे कर लें। संसार में स्वार्थ की ही मारामारी है आजकल, कोई किसी का भाई नहीं रहा। मैं तो इसलिए जानता हूं ना, लोग यही समस्या लेकर आते हैं। हमारे दादा ने अपने बड़े लड़के को, जो समझदार था भाई, मालिक बना दिया था कि सब बच्चों की पालना करना, इन्हें हिस्सा देना, समझा के लिख के गया था। अब वो कहता है सारा माल मेरा है, तुम्हें नहीं मिलेगा। स्वार्थ, हर जगह स्वार्थ का साम्राज्य हो गया, घर घर में। इस स्वार्थ से जो बाहर निकल जाए वो बहुत सुखी रहेगा। स्वार्थ से मुक्त आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ में चली जाएगी। अब इधर अलौकिक में, लौकिक में तो स्वार्थ ही स्वार्थ है, मेरा किया तो मैं भी करूं, नहीं किया तो नहीं। और अपने तो आजकल अपने रहे नहीं, ये ड्रामा में प्लान भी है, क्या? नष्टो मोह बनाने का। नहीं तो ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, जब मेरो से धोखा मिलता है तो लगता है अब तो ये तो मेरे नहीं है, मेरा तो बाबा ही है। पहले केवल गाते थे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये भी गाते तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरे भी मेरे। अब थोड़ा संभलने लगे हैं, हो रहा या नहीं? सबके घरों में यही झगड़े, कई अनुभवी बैठे होंगे यहाँ। तो हमें सेवाओं के फील्ड में स्वार्थ को समाप्त करना है। स्वार्थ किस रूप में है यहाँ सेवाओं में? मैं मैं मेरा ही नाम हो, मुझे ये मिले, मैं ही ये सेवा करूं, मैं ही है, और मैं करने वाले क्या रह जाएंगे? बोल दो ना, डर क्यों रहे हो? माताएं धीरे धीरे बोल रही हैं, मैं करने वाले बकरे बकरी, और त्याग करने वाले शेर शेरनी, मैंपन सारे संसार में भी है और यहां भी रह गया तो नहीं मजा आएगा। निमित्त भाव को समझना है, समझना है, कहने में तो सभी कह देते हैं, हमारी सभी टीचर बहने भी ये कहती हैं, हम यहाँ सेवा के निमित्त हैं। अच्छी बात है, बाबा ने एक लहर फैलाई है, लेकिन निमित्त भाव रख लेना और इससे ही अहम भाव समाप्त हो जाएगा, निर्माण चित्त हो जाएंगे। बहुत जगह ये दिखाया शास्त्रों में भी कि साधनाओं के मार्ग में या जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अहम ही सबसे बुरी चीज है। अहम को छोड़ने वाले ही सच्चे ज्ञानी हैं। अपने अहम को महसूस करने वाले और गुह्य ज्ञान रखने वाले हैं, नहीं तो सब यही सोचते हैं हमारे में तो मैं है नहीं, सब बाबा ही तो कर रहा है। लेकिन ये बात कहने तक नहीं चलेगी, सूक्ष्म रूप से भी मैं नहीं बाबा, और इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। अब एक माता चिंतित है, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो विनाश आ गया है, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, उसे ये पता नहीं इनका भी विनाश होगा, मेरे बच्चों का क्या, मैं तो चली जाऊंगी पर मेरे बच्चों का क्या होगा। बहुत माताएं पूछती है, मैं हंसता हूं उनपे, मैंने कहा अभी तक ज्ञान नहीं लिया, 10 साल से लिया है भाई जी, फिर बाबा कहाँ गया? कल तुम न रहो तो तुम्हारे बच्चों का अपना भाग्य नहीं है क्या? कितने बच्चे अपने श्रेष्ठ भाग्य को लेकर जीते हैं। एक बहुत साहूकार व्यक्ति दिल्ली में, जिसको कोई संतान नहीं थी, उसको 4-5 भट्टे थे ईंटों के, और भी बहुत प्रॉपर्टी थी, भट्टों पे जो मजदूरन काम करती थी गरीब घर की, उन एक को बच्चा हुआ, उसने उसको गोद ले लिया, दूसरे को हुआ उसको भी गोद ले लिया, अब वो 2 बच्चे बहुत साहूकार हैं। कुछ नहीं करते वो जिंदगी में, ना पहले किया ना अब करते, लेकिन अथाह धन संपदा है। किसने दी उनको? भाग्य ने। जन्म लिया भट्टे पर, टोकरी में। जन्म देने में क्या क्या करते हैं लोग, कितनी सुरक्षा करते हैं, उनकी कोई सुरक्षा ही नहीं, और भाग्य लेकर आए ऐसा कि राजाओं की तरह रहते हैं। तो मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं छोड़ भी ना दो, मैं नहीं कह रहा बच्चों को छोड़ दो कि इनका भाग्य इनके साथ, पर इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्य करना, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना, मुख्य लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए। कल क्या कहा बाबा ने, स्वस्थिति परिस्थिति, बोलो और बोलो। 2 ज्ञानी इधर बैठे, 2 इधर बैठे, बाकी सब भी बोलो जरा, बोलो। ऐसी बातों को भूलना नहीं चाहिए। स्वस्थिति, श्रेष्ठ स्वस्थिति के आगे परिस्थितियां कुछ भी नहीं। कहा या नहीं कल? और बहुत बार कहा है। और स्वस्थिति श्रेष्ठ बनाओ तो परिस्थितियां आपे ही बदल जाएंगी, ये बहुत बार कहा है, कितनी भी बड़ी परिस्थितियां हो, लेकिन अगर मनुष्य ज्ञान के बल से ये सीख ले अपने को ऐसा कर लेके स्थिति न बिगड़े तो सब ठीक हो जाता है। और मैं माताओं की बात करता हूँ, माताएं कहती है ना आप हमारे लिए ज्यादा बोलते हो, मैं खराब ही नहीं बोलता, अच्छा बोलता हूँ। माताएं हमें सुनाती हैं, अभी भी एक दो ने सुनाया, हमारे सामने बहुत परिस्थिति आ गई 2-3 साल से, लेकिन मैंने दृढ़ संकल्प रखा था स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगी। 3 साल तो लंबा समय होता है ना, उसने अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं दी। न अमृत वेले उठना छोड़ा, भले योग कम लगा हो, न मुरली में जाना छोड़ा, सब कुछ ठीक हो गया। यह है हिम्मत। और बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ब्राह्मण यही करते हैं, परिस्थिति आई तो सबसे पहले सवेरे उठना छोड़ेंगे, का इससे गड़बड़ हो रही, सब देर तक सोएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, होगा। कितना बड़ा ज्ञान, जो ठीक करने वाला उसको छोड़ना चाहते, बाबा के बने तब से समस्याएं आ रही हैं, छोड़ो बाबा को, होगा समस्याएं और विकराल हो जाएंगी, क्योंकि जिसकी मदद मिल रही थी उससे भी किनारा कर लिया, लोगों को पता नहीं चलता कि वो बहुत मदद कर रहा है। अगर वो न मदद करे तो वो परिस्थिति मनुष्य को नष्ट कर सकती है, उसकी मदद के कारण बहुत कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जीवित हैं, भोजन मिल रहा है। वो भूल जाते हैं, सोचते हैं बाबा ने क्या कर दिया, पता नहीं होता बाबा क्या क्या कर रहा है हर बच्चे के लिए। इसलिए निमित्त भाव समझें, इसकी गहराई को। अहम भाव अगर रहेगा तो अहम भाव हमारे मार्ग में एक दीवार है, निमित्त भाव बाबा हमें यूज कर सकेगा अपने कार्यों में। इसलिए इस भाव को सभी बढ़ाते चलें, और स्वार्थ पहले महसूस करें कहां कहां स्वार्थ है। भाई मेरा नाम होगा यहाँ तो मैं सेवा करता हूँ, नहीं तो नहीं, इस सेवा से मुझे कौन जानेगा, नहीं करते ये सेवा हम, कौन जानेगा, जिसके लिए सेवा कर रहे हैं, जिसको बताना है उसको तो पता है ना। आज क्या कहा बाबा ने, तुम्हारे संकल्पों की बात तो छोड़ो, दिल की धड़कन को भी बाबा जानता है, इसलिए जानी जाना ना रोने की जरूरत नहीं, जानता ही है पहले ही। देखे एक एक के अंदर बैठ के देखने की कहाँ जरूरत है, पहले से ही पता है सब कुछ, इसको कहते हैं नॉलेज फुल। तो जिसको पता है, जिसके लिए कर रहे हैं, वो तो अच्छी तरह जानता है ना, उसको सब पता, एक एक पत्ते का पता है ना, कितने अच्छे शब्द बोलता है बाबा, एक एक पत्ते का सब कुछ पता है। तो अहम भाव को छोड़कर निमित्त भाव धारण करेंगे, स्वार्थ से मुक्त जीवन डिवाइन बन जाता है, दिव्य विचार, दिव्य बुद्धि, दिव्य। और जहां स्वार्थ है वहां मनुष्य का दायरा बहुत छोटा हो जाता है, सीमाएं। मैं एक बात सुना रहा हूं, 2-3 बार सुना चुका हूं यही क्लास में अभी अभी। एक व्यक्ति सोचता है मेरी ये ड्यूटी है, मैं ड्यूटी कोई ना ले, कोई लेना चाहता है तो कहते हैं देखो ये मेरी ड्यूटी लेना चाहता है, बड़ा खराब व्यक्ति है, मुझे गिराना चाहता है। बात तो ठीक लगती है, किसी की कोई ड्यूटी क्यों ले भाई, लेकिन सोच सकते हैं इससे आगे, बाबा उससे बड़ी सेवा उसे देना चाहता है। और अगर कोई किसी ने अपने को दीवारों में बंद कर लिया है तो वो सदा वहीं रहेगा ना, और जिसने दीवारों से अलग निकाल दिया है वो निरंतर बढ़ते जाएंगे। इसलिए अपने को किसी दायरे में अटका लेना, यह है अपने को बांध देना, आगे बढ़ने के सारे मार्ग रोक देना, अवरुद्ध कर देना, ये कोई और नहीं कर रहा, मनुष्य स्वयं कर रहा है। तो हम सभी अपने सूक्ष्म स्वार्थ को पहचान कर उसको छोड़ेंगे। मैंपन की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है, मैंपन की सूक्ष्मता बहुत लंबी चौड़ी है। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरे से बुना पूछे, बोलो माताएं, मैं इस घर का मालिक हूँ। माताएं चुप है, भाई भाई बताओ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरे बिना पूछे पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। चलो ये बात हम भाइयों पे सौंप देते हैं, ठीक है या नहीं? भाई लोग चुप हैं, बताओ, आप तो गृहस्थी हो ना, बोलो ठीक है ये बात। मैं कमाता हूँ, मेरे बिना पूछे ही सारा काम कर दिया है। कुछ अच्छा बोल रहे पीछे वाले, चुपचाप बोल रहे, दोनों कमा रहे आजकल। अच्छा ये बोल रहे हैं कि आजकल दोनों कमा रहे हैं। और देखो इसमें बहनों की बहादुरी ज्यादा होती है, जॉब पर भी जाते हैं और घर भी संभालती हैं। आजकल हिस्सेदारी ले लिए थोड़ी थोड़ी, सब ने नहीं, जो समझदार हैं वो थोड़ा मदद करते हैं बहनों को, हैं? सब ने ले ली थी क्योंकि खाली रह के भी तो परेशान हो जाते थे। और मनुष्य को कार्य करना ही चाहिए, जो एक्टिव है उसकी बीमारी भी जल्दी भागती है और जो सुस्त है बीमारी ठहर जाती है वहां। इसलिए एक्टिव तो सदा ही रहना चाहिए, खाली रहने से तो आजकल मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। इसलिए खाली नहीं, जितने एक्टिव रहेंगे उतना ही जीवन बहुत अच्छा चलेगा। तो हम सभी हाईएस्ट होलीएस्ट और रिचेस्ट हैं, इनका प्रयोग करो अपने जीवन में। हिंदी, हम महान हैं, बहुत धनवान हैं, परम पवित्र हैं। तीन शब्द सवेरे उठते ही ये तीनों बातें याद कर लेना कई कई बार। मैं महान आत्मा हूँ, दूसरा भी जोड़ ले, बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, परम पवित्र हूँ। तो ये सब चीजें बढ़ने लगेंगी, इनका महत्व आप समझ लें। बाबा जो कह रहे हैं ना, इनको याद करो, स्मृति में रहो, उसका बहुत बड़ा लाभ ये होगा, तीनों ही चीजें बढ़ने लगेंगी। भाग्य बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, पवित्रता बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी। इनको करके देखो आप सब, स्मृतियों में लाओ बार बार। जो समझते हैं मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं देता, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, इस नशे को बढ़ा दो। जो समझते हैं हमारे पास पैसा नहीं ठहरता, गरीब हैं हम, वो इस स्वान को बढ़ा दें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। दिन में भी करते रहो, देखो चमत्कार इसका होगा या नहीं। चमत्कार माताओं से पूछ रहा हूँ, विश्वास है आपको? ये सोचते हैं ऐसा कहने से हो जाता तो लोग क्यों कमाते। दुर्गा देवी जो बहुत बुद्धिमान है ना, वो ऐसा सोचते हैं, भला ऐसे कहने से हो जाएगा? फिर ये रात दिन बिजनेस की भाग दौड़, नौकरियों में खींचातान, इसकी क्या जरूरत है, यही कहने लगो काम बन जाएगा। दूसरों का धन अपने पास, राम नाम जपना, सबको याद है ये तो, वही है। ये श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, संसार में तो ये कोई कहना भी नहीं जानता। अगर कोई कहे मैं महान आत्मा हूं, लोग सोचेंगे बड़ा अभिमानी है, भाग्यवान हूं, दूसरे तो कह देते हैं व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है, लेकिन खुद लोग ऐसा नहीं सोच पाते। मैं बहुत धनवान हूं, ये अहंकार में बदल जाती आज की बात। हमारा धन संपूर्ण रूप से अलौकिक है, तो सवेरे उठ के ही इसमें महत्व है, सवेरे उठकर करने का, तब हमारा अंतर मन पूरी तरह जगा हुआ रहता है। उस समय जो संकल्प हम करेंगे वो प्रैक्टिकल में होने लगेगा। छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास, बहुत आज एक छोटी सी बच्ची सवेरे आई, कल उसने डांस भी किया था वहां शांतिवन में, आज सवेरे ही किया था वहां मुरली के बाद, तो उसकी माँ और बाप और वो छोटी बच्ची। तो देखो ये आत्माएं भाग्य लेकर आई हैं, घर में माँ बाप को कुछ भी ऐसा वैसा करने नहीं देती। अगर वो सो रहे हो सवेरे, वो पहले उठती है, सोने नहीं देती उन्हें। ये अच्छी आत्माएं आई है ना परिवारों का कल्याण करने के लिए। तो हम सभी को बाबा ने जो ये महान बातें सिखाई हैं, हम इन पे ध्यान दें, इनको स्टडी करें। आज सवेरे की मुरली बहुत गुह्य थी, ये अव्यक्त मुरलियां अति गुह्य ज्ञान लिए हुए, गहरा मनोविज्ञान है इनमें, बहुत गहरा मनोविज्ञान, जिसको मनोवैज्ञानिक जानते भी नहीं है, वो बातें बाबा ने सरल भाषा में बता दी हैं। इसलिए इनकी खुद स्टडी करें। आज की मुरली में कई गुह्य राज थे, मैं देखा पढ़ने वालों ने फटाफट पढ़ दिया, उससे काम नहीं चलेगा, बड़े गुह्य रहस्य दी हुई हैं बातें, ताकि हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें और जो सूक्ष्म चीजें जिनको हमें पहचानना है उनकी हम पहचान कर सकें। बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात आई साकार में, पतित पावन आओ मुझे बुलाते रहे तुम। लेकिन संसार में किसी को ये पता नहीं है, न था, नहीं कुछ और है, वो कम लोग कैच करते हैं उसे, कि पतितों को पावन भगवान आकर कैसे बनाता है, विधि क्या है पतितों को पावन बनाने की, उसकी विधि क्या है, कौन सी विधि है, राजयोग, ज्ञान भी लेकिन योग सबसे बड़ा, भक्ति में उसी योग की जगह लोगों ने पूजा पाठ शुरू कर दिया, यज्ञ हवन शुरू कर दिए। एक वेद तो पूरा देवताओं के पूजन का है, और यहाँ देवता बनने की विद्या है, पूजन की तो बात ही नहीं, पूजनीय बना देता है बाबा। तो ये जो बाबा रोज हमें गहरी बातें सुनाते हैं, संडे की जो रोज हर बार अव्यक्त मुरली आती है, उस पे गहन चिंतन करो, उसकी बातें लिखो। पीछे मास्टर सर्व शक्तिवान की चार तरह का बल याद है, पिछले संडे तो था शायद, ज्ञान का बल, तन का, संबंधों का, मन का, तन मन धन जन, तन मन धन और संबंध, चारों का बल, बहुत गहरी बातें हैं। एक एक लाइन राज भरी है, एक एक लाइन ऐसी है अनेक प्रश्नों का उत्तर है। सुनाऊं एक लाइन आपको, अगर धन या कोई वैभव पदार्थ प्राप्त होने में कठिनाई है तो समझ लो ज्ञान धन की कमी है। देखो एक ही लाइन में संसार के सबसे बड़े राज आ गए, नहीं वो नहीं, प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है, उसी मुरली में है, ये पदार्थ ये धन ये सब प्रकृति की देन है, और ज्ञान धन से भरपूर आत्मा प्रकृति की मालिक बन जाती है। ऐसी बातों पर चिंतन भी करना है बहुत अच्छी तरह, और इनको अपने प्रैक्टिकल अनुभवों में लाना है, कि ज्ञान धन बढ़ाने से स्थूल धन कैसे खींच कर आता है, मैं भाग्यवान हूँ ये स्मृति रखने से भाग्य कैसे वृद्धि को पाता है, निमित्त भाव रखने से सेवाओं में अलौकिक कार्यों में कैसे सफलता मिलती है, इसके अनुभव बढ़ाते चलें। तो तो अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, ये बहुत बड़ा खजाना है जीवन का। अनुभवी व्यक्ति ही अचल अडोल बन सकता है। तो सभी बहुत ध्यान देंगे। मैंने तो जो ये तन मन धन जन चार बल की मुरली आई, मैं इसको बहुत बार पढ़ा। जितनी बार पढ़े एक एक लाइन में नया राज समझ में आए। बहुत गहरी बातें थी, इसलिए मैंने पहले क्लास में कोट कर दिया था कि 7 फरवरी की मुरली बहुत गहरी है, लोगों ने पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था। बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो सभी अपने खजानों को आगे बढ़ाएंगे और फाइनली क्या कहा बाबा ने, खजानों में वृद्धि होगी। कैसे? यहाँ तो भारत की कल्चर ही है, धन दान करो तो धन बढ़ेगा, है या नहीं? देते चलो बढ़ाते चलो। चलो, ओम शांति।
से भर ली।